والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما لا بقية الله في الأرضين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فورٹین فورٹی ایٹ ہجرہ کے ایام عزا کے پہلے عشرے کی آج کی مجلس کے شروع میں، جو اب تقریباً میرا روٹین بن گیا ہے کہ لاسٹ نائٹ کی مجلس سے ریلیٹڈ ایک دو باتیں ہوتی ہیں، پہلے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. ایک تو میں کریکشن کر دوں، لاسٹ نائٹ ڈیو ٹو سم ریزن، مجھے اپنی پوری میڈیکل ہسٹری تو آپ کے سامنے نہیں پڑھنا ہے، تو ڈیو ٹو سم ریزن دو الگ الگ واقعات تھے، وہ مکس اپ ہو گئے. اور میں نے یہ اپنی ڈیوٹی سمجھی، کسی نے مجھ سے کہا بھی نہیں، کیونکہ لوگ کہیں گے تو اس وقت نہ جب پوری توجہ سے مجلس سن رہے ہوں گے. نہیں، بہرحال مجھے معلوم ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں، لیکن یہ کہ دو الگ الگ واقعات مکس اپ ہو گئے، میں نے کہا کہ اس کو الگ کر دوں. وہ واقعہ کہ جب مولا متقیان نے اویس قرنی کا انتظار کیا، وہ جنگ صفین کا واقعہ تھا. اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میدان صفین کی زیارت جب تک لوگ کر رہے تھے تو جناب اویس قرنی کے روزے پہ بھی جاتے تھے، پھر جب وہاں کے حالات خراب ہوئے تو جناب اویس قرنی کے روزے کو بھی ڈیمولش کیا ان لوگوں نے جو دشمنان اہل بیت تھے. اور انشاءاللہ سیریا کی زیارتیں ایک مرتبہ پھر اسے شان و شوکت کے ساتھ شروع ہو جائیں گی کہ جو اس سے پہلے تھیں، جیسے ہم نے خود عراق میں صدام کے زمانے میں دیکھا اور اس کے بعد دیکھا. تو اویس قرنی کا روزہ صفین میں، وہ جو واقعہ تھا کہ وہ ایک کیا ایسٹرولوجسٹ کہیے کہ نجومی کہیے، جو ستاروں کا علم رکھتا ہے، وہ مولا کے پاس آ کے کہہ رہا ہے، وہ اس کے بعد والی جنگ کا واقعہ ہے، جنگ نہروان. مولا نے رسول خدا کے بعد تین جنگیں لڑی ہیں، جنگ جمل ہے، دوسری جنگ صفین ہے، تیسری جنگ نہروان. اور جنگ نہروان ہی کے نتیجے میں ابن ملجم اور وہ جو عورت تھی کوفے کی قطامہ، ان کے درمیان یہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ میرے نکاح کا مہر علی کا سر ہے. تو جنگ نہروان تیسری اور آخری جنگ تھی. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ جنگ نہروان میں امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے کی شہادت ہوئی. جب جنگ نہروان مولا نے لڑی، اس کا مطلب یہ کہ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی. سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم، وہ جنگ نہروان میں شہید ہوئے، جس کی وجہ سے پھر جب امام حسن کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا تو پھر وہ یہ کربلا والے جناب قاسم ہیں. آپ لوگ جاتے ہوں گے طفلان مسلم کی زیارت کے لیے مسیب میں، تو اس کے بالکل پیچھے ہی امام حسن کے بڑے بیٹے قاسم کا روزہ ہے. اگرچہ اتنے زیادہ لوگ وہاں نہیں جا پاتے تو وہ اتنا شاندار ابھی روزہ نہیں. تو یہ جنگ نہروان تھی. یہ جنگ نہروان ان لوگوں سے ہوئی تھی جو سب اپنے آپ کو علی والا کہہ کے صفین تک علی کے ساتھ تھے. پھر جب حاکم شام نے اپنی ڈرٹی پولیٹکس کے نتیجے میں قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا تو بہت سارے لوگ مولا کو چھوڑ کے چلے گئے، جن میں سے کئی بعد میں کربلا میں آئے، لیکن ایک پورا فرقہ بن گیا خوارج کا. ان سے مولا نے نہروان کی لڑائی لڑی. اس کے بعد اب اس کو کنیکٹ کیجئے میرے اس جملے سے، یہ صرف میں کریکشن کر رہا ہوں جبکہ اس کا میرے اپنے سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر غلطی سے دو واقعات میں نے ملا دیے تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی کریکشن ضروری. جنگ نہروان میں یہ تھا कि मौलाए कायनात ने ये अनाउंस किया था कि हमें जो है वो अभी निकलना, दो घंटे बाद निकलना है, तो नजूमी आया और उसने कहा कि ये वक्त अच्छा नहीं है, आप एक दिन डिले कीजिए क्योंकि आपका सितारा अच्छा नहीं है। अब ये जो सितारों का एक इल्म होता है ना, ये एक पागलपना है, हॉरोस्कोप वगैरह, तो इसमें बाज़ औक़ात अजीब अजीब बातें होती हैं। एक बाप ने मुझसे कहा कि मौलाना ये मेरी बेटी है, ये बहुत ज्यादा हर एक से फ्रेंक हो जाती है, जान ना पहचान, कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक है, इससे बहुत ज़रा फ्रेंक हो जाती है, जरा आप इसको समझा दीजिए। मैंने कहा आपकी बात नहीं मानती तो मेरी बात क्या मानेगी, कहा कि नहीं नहीं समझा दीजिए। अब उससे बात शुरू की, उसने पहले ही जुमला ऐसा कहा कि मुझे वापस आना पड़ा। उसने कहा मौलाना आपको पता नहीं कि मैं जेमिनी हूँ, जेमिनी शायद हॉरोस्कोप में कोई होता, तो हमने तो आज तक लफ्ज चिमनी सुना है। उसने कहा मैं जेमिनी, और जेमिनी का नेचर यह है कि वो हर एक से फ्रेंक हो जाता है, वो अपना नेचर चेंज ही नहीं कर सकता, तो अपना लेक्चर अपने पास रखिए, मेरा सितारा ऐसा है कि मेरे लिए ये मजबूरी, ये वाकई मेरे ऊपर गुजरा हुआ वाकया है। तो इतना कुछ लोग बिलीव करते हैं इसके ऊपर। तो खुलासा यह है कि जब मौला ने सुना तो अभी दो घंटे के बाद जाना था, ये नहरवान की लड़ाई, मौला ने कहा तू कह रहा है कि सितारा ठीक नहीं, वो अली को आके बता रहा है, जो अली जिसके घर में सितारा आसमान से उतर के आके सजदा करता, सितारे अली के मोहताज हैं, अली को थोड़ी सितारों के मोहताज है। तो एक मरतबा मौला ने कहा फौरन, अभी ये कह रहा है टाइम बुरा है, अभी हमको निकलना, और अल्लाह पे भरोसा, ये मेरा असल सब्जेक्ट है, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा, वमन यत्तकिल्लाह वाली आयत और अमल मैंने जो बताया उसमें भी ये पैगाम था, अभी ये शुरू होने वाला। मौला ने कहा अभी हमको निकलना है, देखते हैं कि सितारा क्या करता है। पूरी अली की पूरी जिंदगी कोई जंग ऐसी नहीं है जिसमें अली को इतनी बड़ी कामयाबी मिली हो कि पूरा दुश्मनों का लश्कर जो आया था सिर्फ 9 आदमी बचे, पूरा का पूरा लश्कर खत्म हो गया और अली की फौज से सिर्फ 9 आदमी जो थे वो मारे गए थे, यानी वहां लेस देन 10 बचे थे और लेस देन 10 की शहादत हुई थी। तो मौला ने उस वक्त कहा था ये है सितारों की हालत कि तू कह रहा कि मेरा स्टार सही नहीं है, इतनी बड़ी कामयाबी, ये जंगे नहरवान थी। अब ये सिर्फ एक करेक्शन था जिसमें मैंने खासा टाइम ले लिया। आइए एक और बात मैं अर्ज कर दूं, और वो ये है कि वो जो दो दिन पहले मोती का वाकया, मोती टूट गया, बादशाह वो गुलाम, तो उसमें किसी ने सवाल किया कि मौलाना आपने वो दुआ तो बताई, वो दुआ क्या है, कुरान की आयत, जैसे अम्मा युजीबुल मुस्तर जो है दुआ तो है लेकिन असल में तो आयत है ना कुरान की, तो इसका तरीका नहीं बताया। तरीका यही है कि फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा मुसल्ले पे बैठे बैठे आयत पढ़ेंगे। और जल्दी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी रातें हैं, गम का बयान ज्यादा है और मेरा सब्जेक्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ, आज आधी से ज्यादा मजलिसें हो गई, ये शुरू भी नहीं हुआ। अगर कि मैंने कुछ इशारे दिए हैं, खाली उनको कनेक्ट करूंगा तो बात मुकम्मल होगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो है वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि उसका मेरे सब्जेक्ट से बहुत गहरा ताल्लुक है। तीसरी बात यह है कि मैंने एक जुमला दो दिन पहले अर्ज किया था जब मैं बता रहा था कि नजफ अशरफ की जियारत में जाइए, तो ये हमारे कुछ बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मराज नाइबे इमाम, जो बिल्कुल आपके जियारत के दरमियान आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको आधे घंटे या एक घंटे कहीं ट्रेवल करना पड़े तो आप कहें कि हम तो मौला के रोजे की जियारत के लिए आए हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं। खुद मौला के रोजे ही के अंदर उनमें एक नाम मैंने शेख मुर्तजाए अंसारी का लिया और ये कहकर लिया था कि अल्लाह ने उनको एक ऐसे वक्त में पैदा किया कि उस वक्त इस्लाम और शियत को सबसे ज्यादा इनकी जरूरत, वरना जुमला मेरा यह था, वरना फिर हमारे पास शियत के पास भी ऐसे नॉन सेंस कसम के फतवे हो जाते जितना गैरों के पास है। सुन्नत रसूल के नाम पे कैसे कैसे फतवे आते हैं जी, अंडा नहीं खाना चाहिए, रसूल खुदा ने जिंदगी में अंडा नहीं खाया, डबल बेड नहीं होना चाहिए, रसूल खुदा ने कभी अपनी बीवी के साथ डबल बेड के ऊपर रात नहीं गुजारी, या ऐसी ऐसी बातें होती। इसको बयान करना भी जो है ना दीन का मजाक उड़ाना, हम इससे महफूज रहे। और उसका एक बहुत बड़ा उसका उसके अंदर हिस्सा शेख मुर्तजाए अंसारी का, ये वो मर्जी, सिर्फ उन लोगों को याद दिला रहा हूँ जो उलमा के हालात पढ़ते हैं, ये वो मर्जी कि जिनके सामने इमाम ने आकर, जमाने के इमाम ने आकर, अपना इंट्रोडक्शन नहीं करना, एक मसला पूछा और इन्होंने इमाम के, इनको भी पता नहीं कि ये इमाम है, इन्होंने मसला सुन के कहा कि मसले का जवाब तो दे रहा हूँ लेकिन तेरा सवाल ही गलत। तब इमाम ने मुस्कुरा के कहा था कि अंता मुश्तहिदुन हक्का, मैं गवाही दे के जाता हूँ कि वाकान तू मुश्तहिद है। ये वो शेख मुर्तजाए अंसारी। अच्छा मैंने ये जुमला क्यों कहा कि उनका बहुत बड़ा एहसान भी है हम पर, और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी। 200 साल से जितने महाराजे गुजरे हैं वो सब इनके स्टूडेंट हैं, क्योंकि इनकी बुक पढ़े बगैर कोई शख्स मर्जे नहीं बन सकता है। अब मैं क्या आपको एक पुराना वाकया याद दिला रहा हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट बनने वाला है आगे चल के। देखिए, हमारे पास शेख तूसी जैसा अजीम आलिम है, जो दो दफा मैं इसलिए तस्किरा कर चुका हूँ कि 1448 हिजरा में 1000 साल कंप्लीट हो रहे हैं नजफ के हौजे। वो नजफ का हौजा जिसके फाउंडर शेख तूसी थे। इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है, लेकिन आजकल के लिए ये वाकया आप डाइजेस्ट नहीं करेंगे, यानी आप कहेंगे कि ये तो आज हो ही नहीं सकता। शेख तूसी स्टूडेंट थे सैयद मुर्तजा। अब ये मराजे की एक लिस्ट है जो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। शेख मुफीद एक बहुत बड़े मर्जे, और उनको ये खसूसियत हासिल है कि जमाने के इमाम ने अपनी गैबत में, ये गैबत के आलिम है, इनके नाम 2 खत लिखे हैं, और खत भी ऐसे लिखे हैं कि जो एड्रेस किया है नाम के साथ, वो कहा अय्युहल अखुस सदीद, मेरे भाई। शेख मुफीद को इमाम ने 2 खत भेजे जो बाकायदा डॉक्यूमेंट्री किताब के अंदर मौजूद है वो खत, और ये कहकर लिखा है कि मेरे भाई। जैसे अभी आपने सुना होगा, आयतुल्लाह सिस्तानी की उम्र तकरीबन 100 साल हो गई है, बल्कि हो गई है 100 साल इस्लामी हिसाब से, और उनके बहुत सारे क्लास फेलोज, उनके बहुत सारे टीचर्स, हत्ता उनके बहुत सारे स्टूडेंट भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हर एक का वो कंडोलेंस करते हैं। लेकिन अभी शेख इसहाक फैयाज जैसा अजीम मर्जे दुनिया से गया, तो किस तरह से अय्युहल अख़ुस साफ़ी अपना भाई कह के कंडोलेंस किया, जो इससे पहले किसी के लिए नहीं किया था। तो ये इस टाइटल में अजमत होती है। शेख मुफीद के का जो वाकया है ना, जो रात को ख्वाब में देखा शहजादी आई है हसन हुसैन को लेके और कह रही है मेरे इन बच्चों को अल्लिम हुमल फिक, इनको इल्म दीन इल्म फिक सिखाओ, और ये परेशान होके सारी रात रोते रहे कि मैं और हसनैन को क्या मतलब इस ख्वाब का, मैंने कोई ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से मुझे एक वार्निंग मिली है शहजादी की जानिब से। लेकिन अगली सुबह को पता चला कि बगदाद के एक इंतहाई शरीफ सैयद घराने के इंतहाई शरीफ सैदानी, जिनका नाम भी फातिमा था, अपने 2 बेटे लेके आई थी, मुर्तजा और रजी, और उसी तरह जैसे ख्वाब में देखा था वो वहीं आके बैठी जहां ख्वाब में शहजादी बैठी, और अपने दोनों बच्चों को वहीं बिठाया जहां ख्वाब में हसन और हुसैन को बिठाया गया, और वही जुमला उन्होंने इनसे कहा कि अल्लिम हुमल फिक, ये मेरे 2 बच्चे हैं, या शेख इनको आप अपने गार्जियनशिप में ले लीजिए और इनको फिक की तालीम दीजिए। तब समझ में आया कि रात को शहजादी ने मैसेज दिया था कि ये जो 2 सैयदजादे आ रहे हैं इनकी अहमियत को समझो और इनको सही मानों में तालीम दो, तो क्या बने सैयद रजी वो हैं जिन्होंने नहजुल बलागा कंपाइल की। नहजुल बलागा सैयद रजी ने कंपाइल किया, कितना बड़ा एहसान है उनका तशय्यु के ऊपर, और सैयद मुर्तजा उनके बड़े भाई, इल्म में उनसे ज्यादा। ये दोनों के रोजे काजमैन में थे, जो अभी नया वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये रोजे डिमोलिश कर दिए गए, मगर इसलिए कि वो दफन काजमैन में हुए थे, बाद में उनको कर्बला मुंतकिल किया गया था। खैर, तो बात बहुत लंबी हो रही है, मुख्तसर करता हूँ। सैयद मुर्तजा के शागिर्द थे शेख तूसी, अब ये चेन बनी, शेख मुफीद के शागिर्द हैं सैयद मुर्तजा, जिनको शहजादी ने ख्वाब में आकर बाकायदा तौर पे शेख को को ये हुक्म दिया कि इसको मर्जे बनाओ, मुश्तहिद बनाओ, उनके शागिर्द थे शेख तूसी। अब ये समझ लीजिए थोड़ा आपको समझाने के लिए, इन दोनों का वो रिश्ता था जैसे मरहूम आगा खोई और आगा सिस्तानी का रिश्ता, आगा खोई उस्ताद, आगा सिस्तानी उनके शागिर्द, सैयद मुर्तजा उस्ताद, शेख तूसी उनके शागिर्द। दोपहर का वक्त है, सैयद मुर्तजा को कहीं काम से जाना था, तो पुराने जमाने के अंदर तो सवारी घोड़े होते, हर शख्स के पास अपनी, जैसे आपके आप में से हर एक के पास कार होती है तो हर एक के पास घोड़ा होता था। सैयद मुर्तजा के पास घोड़ा था, वो घर से निकले और अपने घोड़े पे बैठने लगे, तो घोड़े के ऊपर जो वो जीन लगाई जाती है, शायद अंग्रेजी में सैडल कहते हैं, वो जीन जो थी जब घोड़े से काम न लिया जाए तो उसे खोल के एक तरफ रख देते हैं ताकि वो जरा रिलैक्स रहे, फिर जब जाना हो तो उसको घोड़े के ऊपर बांधते हैं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज जिस शहजादे के मसाइब पढ़े जाएंगे उनके मसाइब में खास ये जुमला है कि जब उनको घोड़े पे बिठाया गया तो वो जो जीन थी, पैर नहीं जा रहे थे, उसको काट के छोटा किया गया। ये अभी इख्तिताम पे बात आएगी, जो शुरू में जरा सी वजह। तो अब उन्होंने वो जो सैडल है या जीन है वो घोड़े पे लगाई और बैठना चाहते हैं, सामने ही शेख तूसी गली में बैठे, यानी गोया आगाए खोई जा रहे हैं सवारी पे, सामने आगाए सिस्तानी बैठे। शेख तूसी ने कहा कि ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम, इस जीन पर मत बैठी, क्योंकि अभी अभी इस गली से कुत्ता गुजरा था जिसपे पेशाब करके आगे बढ़ गया था, नजिस आंखों देखी बात बता रहे, सुनी सुनाई नहीं कि मैंने आंखों से देखा। सैयद मुर्तजा ने कहा कि ठीक है तुमने सही कहा हो, लेकिन चूंकि इस्लाम में विटनेस में दो आदमी होना चाहिए और तुम दो नहीं हो खाली एक, इसलिए मेरे फतवे के एतबार से तुम्हारा विटनेस कबूल नहीं है और ये मैं इसको पाक समझ के ही मैं जाऊंगा। अच्छा, अब ये मसला तो है ना कि दो विटनेस होने चाहिए तकरीबन हर चीज के अंदर। ये वाला फतवा तवील अरसे तक चलता रहा, लेकिन अगर आज आप देखें तो क्या खुद आपका जहन इस बात को कबूल करेगा कि आंखों के सामने, और कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, आगे सिस्तानी के लेवल का आदमी कह रहा है कि मैंने आंखों के सामने ये मंजर देखा, और जवाब मिले कि चूंकि फिकही मसला ये। अच्छा, दोनों उस्ताद और शागिर्द में एक इल्मी बहस हुई, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, एक इल्मी बहस हुई। शेख तूसी कह रहे मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, मैं खुद मुश्तहिद हूं, और सैयद मुर्तजा कह रहे हैं कि दो आदिल होने चाहिए, तुम दो नहीं हो एक हो, तो तुम्हारी सारी रिस्पेक्ट के बावजूद तुम्हारी विटनेस कबूल नहीं। झगड़ा इतना बड़ा कि ये तय पाया कि ये मसला खत में लिखकर, ये नजफ का वाकया है, मौला के जरिए में डाला जाएगा। रात के वक्त रोजा बंद किया जाता था, ये तो अभी चंद सालों से पूरे 24 आवर्स रोजा खुलता है, वरना पहले रात को बंद होता और सुबह देखेंगे क्या होता। चुनाचे वो खत में दोनों ने ये मसला लिख के साइन करके जरिए में डाल दिया। अगली सुबह को वो लेटर जरिए के बाहर पड़ा हुआ, जब उसको उठा के देखा गया तो उसमें मौला का फरमान था, अल हक्को मा वलदी व शेख व मोतमदी, इस वक्त मेरा बेटा सैयद मुर्तजा सही कह रहा। जब फतवा यह है कि दो होने चाहिए तो एक नहीं चलेगा, मगर शेख का स्टेटस कम नहीं है, मोतमदी, मुझे इन पे पूरा पूरा ट्रस्ट है कि ये भी सही, लेकिन हक जो है सही मसला वो सैयद मुर्तजा का। लेकिन अब दुनिया जहां पहुंच गई है जिस स्टेज पे 21st सेंचुरी, वहां तो ये मसले नहीं चल सकते इस तरह से कि हर चीज के अंदर दो आदि। शेख मुर्तजा अंसारी 200 साल पहले गुजरे, उन्होंने इश्तिहाद के कोर्स एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया और कहा कि जहां जहां दो गवाह चाहिए, अगर वहां एक गवाह हो लेकिन आदमी को यकीन हो रहा तो वो एक भी चलेगा, चाहे वो आदिल भी ना हो बल्कि बस काबिल भरोसा हद तक काफिर हो। चुनाचे किबले का डायरेक्शन, आप सब लोग दुनिया भर में जाते हैं किबला नुमा इस्तेमाल करते हैं या आईफोन वगैरह के अंदर, ये कोई दो मोमिनों की गवाही नहीं, सैयद मुर्तजा के फतवे में जायज नहीं था। खाली सैयद मुर्तजा नहीं, वहां से लेकर 800 साल तक ये फतवा चलता रहा। अब इसके अंदर इनकलाब, ये फतवा बहुत बड़ी सहूलत लेके आ रहा, वरना तो आपके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। हत्ता चांद के मसले में भी यही, दो आदिल होने चाहिए, लेकिन अगर दो आदिल नहीं एक आदिल, आदिल भी नहीं, आदिल माने जो हर गुनाह से दूर हो, एक ट्रस्ट वर्दी आदमी, एक नॉन मुस्लिम, आदिल तो नहीं, हमको उसमें भरोसा, तो उसकी गवाही भी चल जाती, नहीं चलेगी पुराने फतवे में। हाँ, सिर्फ एक मसला ऐसा है जिसमें दो आदिल होना चाहिए, क्योंकि वो गवाही नहीं है, वो जो है प्रोसेस का हिस्सा है, और वो है तलाक। तलाक के लिए लाजिम है कि दो आदिल यानी मर्द जो हर गुनाह से दूर हो, वो अपने कानों से ये सेवा सुने, वो विटनेस के तौर पर नहीं सुन रहे, वो ये प्रोसेस का एक हिस्सा है। अगर दो आदिल नहीं है, एक है, या इन दो में से कोई एक गुनाहगार है, तो वो तलाक होगी नहीं, होगी नहीं। ऐसा नहीं है कि तलाक तो हो गई लेकिन आगे प्रूव नहीं हो रहा, नहीं, होगी ही नहीं। तो तलाक को छोड़ दीजिए, एक जुमला मैं अभी कह रहा हूं, क्योंकि मेरे इस टॉपिक में आगे चलकर हमारी कौम का बर्निंग इश्यू जो बन गया है, रोज तलाक, रोज तलाक, रोज तलाक, इस कसरत से तलाक होने लगी कि बाद औकात तो जब कोई आता है हमारे पास कि मौलाना वो जरा निकाह है मेरे बेटे या बेटी का तो आप पढ़ दीजिएगा, तो मैं कहता हूँ कि देखिए आप अभी से ही बुकिंग कर लीजिए कि निकाह भी मैं पढ़ दूंगा, फिर जो तलाक एक हफ्ते के बाद आप करेंगे तो आके आप कहेंगे तो अभी से आप बुकिंग कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। 5-5 दिन के बाद तलाकें हो रही हैं एक एक हफ्ते, लेकिन ये अलग मौजू है, नहीं मैं अभी बोलूंगा इसको, ये कौम का बहुत अहम मसला है, लेकिन टाइम से पहले। लेकिन बहुत सारी तलाकें इसलिए गलत है कि जो लोग वहां जिनको विटनेस बनाया जा रहा है, वो विटनेस वो है कि जो नमाज जमात पढ़ाने की सलाहियत रखता हो, हर सगीरा और कबीरा गुनाह से पाक हो। तो अब ये शेख मुर्तजा अंसारी का बहुत बड़ा रोल है इस वक्त की दुनिया में। जो हम एक और मिसाल दे, डीएनए के जरिए से जो आजकल तय होता, ये कोई गवाही नहीं है शरीयत, लेकिन वहां पर वही शेख मुर्तजा का नजरिया चलेगा कि अगर इससे यकीन हासिल हो रहा तो इस पर अमल करना वाजिब। कितनी आज की जितनी भी मेडिकल साइंस से रिलेटेड चीजें वो बगैर गवाहों के भी कबूल हो जाती है शेख मुर्तजा के फतवे की वजह से। तो बड़ा एहसान है इनका इस्लाम पर भी, तशय्यों पर भी, और ये जो दीन हमारा आगे बढ़ रहा है मर्जे से, बहुत अजीम मर्जे से। लेकिन जब मर्जे की बात आ रही है तो जुमला सुनिए जिससे ये मेरे टॉपिक से बात कनेक्ट हो रही है। मौला से एक बार पूछा गया, और ये हदीस जो है ना, जब हम लोग हौजा इल्मिया में अपनी एजुकेशन शुरू करते हैं, यानी समझ लीजिए कि प्रेप क्लास वन से भी पहले ये हदीस हम लोगों को पढ़ाई जाती है, यानी हमारे कोर्स के किताब की सबसे पहली जो किताब कोर्स में पढ़ते छोटे बच्चे, उस किताब के अंदर इस हदीस से बात आगाज होती है। पूछा गया मौला इल्म नॉलेज मर्जे, इल्म फिक्र सैयद मुर्तजा शहजादी की वसीयत, अब ये जो इल्म की बात आ गई, इल्म किसे कहते हैं, क्या चीज है इल्म। मौला ने जवाब दिया अव्वलुल इल्म मारिफतुल जब्बार व आखिरुल इल्म तफवीजुल उमूर इलैह। देखो इल्म स्टार्ट होता है अल्लाह को पहचानने से, अगर अल्लाह को नहीं पहचान पाए तो सारा इल्म बेकार है, आखिरत के लिए दुनिया में काम आएगा। मेडिकल साइंस भी दुनिया में काम आती है, फिजिक्स भी दुनिया में काम आता है, आईटी भी दुनिया में काम आता है, लेकिन वो इल्म जो आखिरत के अंदर इंसान को निजात दिलाता है मारिफत जब्बार, यही वजह कि दुनिया उस जमाने का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा आलिम अल्लाह की मारिफत नहीं रख रहा था, तो क्या कहा रसूल ने, ये अबू जहल। अबू जहल अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम था, पूरे अरब में उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई इंसान नहीं, उसका नाम था उमर इब्ने हशाम, किसी को नहीं पता होगा नाम या बहुत कम लोगों को पता हो, लेकिन वो इतना अरब उससे इतना इंप्रेस थे उसके इल्म से कि उसको कहते थे अबुल हिकम, ये हिकमत का बाप है, फादर ऑफ विजडम, फादर ऑफ नॉलेज। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हम अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्किल को कन्विंस करते हैं इस्लाम के लिए, वो कन्विंस हो जाते हैं लेकिन फिर भी कलमा नहीं पढ़ते, तो हम उन दोस्तों से पूछते हैं कि भाई, कहा कि हम तो कन्विंस हो गए लेकिन देखो इतना पढ़ा लिखा आदमी ये अबुल हिकम जब कह रहा है कि इस्लाम गलत है तो यकीनन कोई ऐसा पॉइंट है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। इसकी वजह से सैकड़ों लोग इस्लाम में आने से रुक रहे हैं, जैसे कोई बड़ा साइंटिस्ट आज कोई ऐसी बात कह दे, आइंस्टाइन लेवल का, न्यूटन लेवल का, स्टीफन हॉकिंग लेवल का, तो बहुत से लोग कहेंगे भाई अब वो ये बात कह रहा है तो यकीनन हम तो इतना इल्म नहीं रखते, कहीं ना कहीं कोई चीज हम मिस कर रहे हैं। पैगंबर ने कहा अच्छा इसकी वजह से लोग हक की तरफ नहीं आ रहे, तो इसको अबुल हिकम क्यों कहते हैं, फादर ऑफ नॉलेज, इसे अबू जहल कहा करो, ये जहालत का बाप है, जब अल्लाह की मारिफत हासिल ना हो सके वह इल्म नहीं, दुनियावी काम आएगा आखिरत में नहीं आएगा। ये मौला की हदीस है, इल्म स्टार्ट होता है अल्लाह को पहचानने से, और इमाम ने कहा इल्म कंप्लीट हो जाता है जब तुम अपनी जिंदगी का हर काम अल्लाह के हवाले कर दो अल्लाह पे ट्रस्ट करते हुए। ये अहम तरीन मोमिन की क्वालिटी करार दी गई है कि अल्लाह पे ट्रस्ट करना, अल्लाह पे भरोसा करना है। और आज के दौर में, अब मैं फिर वो शुरू पहली मजलिस के शुरू में जो जुमला कहा था उसको रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जरा सा डिफरेंट स्टाइल, मैं अपनी मेडिकल हिस्ट्री आपके सामने नहीं पेश करना चाहता, लेकिन आजकल कुछ ऐसी बीमारियां मुझे जो गालिबन 70 प्लस के हर आदमी को हो जाती, और सारे इलाज करने के बाद भी जब कंट्रोल नहीं होती है तो डॉक्टर कहता है कोई टेंशन तो नहीं है, कोई आपके जहन पे ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कितनी ही आज की ऐसी बीमारियां हैं जो बजाहिर फिजिकल बीमारी लगती है लेकिन उसका रीजन ये होता है कि इतने टेंशन आदमी ने लिए हुए, ना शुगर कंट्रोल होती है, ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे मैं किसी डॉक्टर को यह इजाजत नहीं दे सकता कि वो दीन के मसले में इंटरफेयर करे, डॉक्टर भी मुझे इजाजत नहीं देंगे कि मैं मेडिकल साइंस में इंटरफेयर करूं। मैं एक आम सी बात कह रहा हूं, कौन सी बात जो डॉक्टर मुझसे कहते हैं, टेंशन फ्री हो जाएंगे, टेंशन, और टेंशन फ्री होने का एक ही तरीका वो ये कि हर चीज अल्लाह पे छोड़ दे, तफ़वीज़ुल अम्रे इलैह, हर चीज अल्लाह पे छोड़ दे, उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद, अरे खुदा मैंने अपनी सारी जिंदगी तेरे हवाले कर दिया, जिस हालत भी तू रखे मुझे यकीन है कि मेरे लिए वही हालत बेहतर। और यहां पर आप पहले एक छोटा सा वाकया सुनो, ये मैं बहुत पढ़ता रहता हूं, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि बहुत ज्यादा मजलिसें कुछ लोगों ने सुन ली और कुछ लोगों ने बहुत कम सुनी, तो जो बहुत ज्यादा सुनी है, जैसे आज भी मेरे पास 3 मैसेज आए ऑस्ट्रेलिया से, 5 मैसेज आए अफ्रीका से, 1-2 मैसेज आया कैलिफोर्निया, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं तो सब सुना हुआ, ये तो आप ही से सुना है, किसी और से नहीं, आप ही से सुना है, कितनी बार आप पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ ऐसे लोग आए मतलब ना वो वाकई आपने बहुत शॉर्ट कर दिया, जरा कंप्लीट कीजिए ना, हमको सुनना है। अब मैं परेशान कि मैं करूँ क्या। मुल्ला नसीरुद्दीन एक फनी कैरेक्टर है, टर्किश लिटरेचर से उर्दू में आए, मेरा तो दिल चाहता है कि उन्हीं की बात करूं लेकिन वह क्या करूं, उसमें सवाब भी है मुझे मेंबर पे आने का। उनका वाकया ये था कि वो आलिम वालिम कुछ नहीं थे लेकिन अमामा बहुत बड़ा पहनते थे, अबा कबा बहुत उनकी अच्छी शानदार सिली भी होती थी, तो लोग उनको बड़ा आलिम समझते थे। अच्छा, जिस शहर में रहते हैं वहां के लोग तो जानते हैं कि जाहिल आदमी सड़कों में घूमने वाला अमामा पहन लिया, लेकिन जब किसी नए शहर में वो इतना बड़ा अमामा पहन के आया, बहुत बड़ा आलिम हो। लोगों ने पकड़ के कहा कि हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि हदीस, एक एक हदीस के लिए लोग तड़पते थे, अब क्या करें, हम इज्जत बचाना। अच्छा चलो, कल मैं स्पीच करूंगा। अगले दिन आए, मिंबर पे गए, मजमे को देखा और कहा कि क्या तुम लोगों को पता है कि मैं क्या बोलूंगा? लोगों ने कहा हमें क्या पता। कहा जो लोग इतने जाहिल हैं उन्हें पता ही नहीं कि मेरा मैं क्या बोलूंगा, उनसे क्या मैं बात करूं, मैं जाऊँ। चले अगले दिन फिर लोग पकड़ के इनको लाए, इतना बड़ा आलिम हमारे शहर में आया, मेंबर पे गए, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या कहूंगा? अब लोगों ने कहा अगर हम ना बोलते हैं तो फिर चले जाएंगे। सबने कहा हाँ हाँ हमें पता। अरे जब पता है तो फिर मैं क्या स्पीच करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं। चले गए। तीसरे दिन फिर पकड़ के लाया गया, इनको मेंबर पे बिठा दिया गया, स्टार्ट किया इन्होंने, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या कहूंगा? अब तय था लोगों, आधे मजमे ने कहा हमें मालूम है, आधे ने कहा नहीं मालूम। इन्होंने कहा जिनको मालूम है वो उनको जाके बता दे, जिनको नहीं मालूम है मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। तो बाज औकात मेरा दिल चाहता है मैं भी इसी तरह की बात करूँ, लेकिन बहरहाल ये मेंबर पे आके मसाए पढ़ने का सवाब है वो मुझे हासिल करना है। तो ये वाकया भी मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन इतना छोटा है कि जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मौलाना सब कुछ हमारी बात सुनी हुई है, तो उनको भी इतना टाइम तो वो दे सकेंगे। बादशाह, एक बादशाह का वाकया, मेरा मौजू है ये खास मौजू को मेरे हिसाब से अपने मौजू को समझाने के लिए इससे बेहतर कोई वाकया नहीं। गर्चे हदीस नहीं, कुरान की आयत नहीं है, लेकिन इतने आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। फिर एक हदीस पढ़ूंगा। बादशाह शिकार पे जा रहा है, पुराने जमाने में यही लोगों का सबसे ज्यादा मशगला होता था, शिकार पे जाते थे 15-15 दिन, 2-2 वीक, 3-3 वीक, और पूरे इंतजाम के साथ जाते थे, बादशाह वजीर सिपाही ये जा रहा है। उससे एक दिन पहले कोई फल वगैरह काट रहा था कि क्या कर रहा था, वो चाकू से उसकी एक उंगली कट गई, बहुत शार्प नाइफ था, उंगली कट गई। जो उसका सबसे क्लोज वजीर था उसने देखा, बेख्तियार कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का, इसमें यकीन इनको बेहतरी होगी। बादशाह, बादशाह मेरी उंगली कट गई, खून निकल रहा है, तड़प रहा हूं, ये कह रहा अच्छा हुआ ही। बादशाहों का तरीका तो पता है ना आपको, वहां कौन सा कोर्ट, कौन सा ट्रायल, क्या उठा के कहा इसको जेल में डालू, अभी तो मैं जा रहा हूं शिकार पे, आके अच्छी तरीके से इसको पनिश करूं, और चला गया। अब शिकार में अक्सर ये होता है कोई हिरन नजर आया उसके पीछे दौड़े, सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बादशाह भी अलग हो। इसमें कई वाकयात भी हैं, वो अल्लामा हिल्ली का मशहूर वाकया करबला की ज़ियारत में 90 हजों का सवाब क्या है, इमाम ने आके ऐसी ही मिसाल दी थी ना। तो खैर, अब अलग अलग हो गए सिपाही, कहीं बादशाह कहीं वो हिरन के पीछे दौड़ रहा है, हिरन तो नहीं मिला। एक जंगली कबीले ने इसको पकड़ लिया, जैसे अफ्रीका में होते थे कि जो आदमी का गोश्त खाते हैं, या ये कि जो कुर्बानी आदमी की कुर्बानी करते हैं, इसको पकड़ ली। उनको क्या ताल्लुक, क्या पता कि कौन बादशाह कौन आम आदमी का, ओहो हमें अपने बुत पर एक कुर्बानी करना थी तो बहुत अच्छा हमको मिल गया, चुनाचे इसको पकड़ के ले गए। अब इसकी गर्दन पे छुरी चल रही, अकेला रह गया है, ना कोई वजीर है ना कोई सिपाही है, बस जिंदगी जाने वाली है कि अचानक किसी, वो जो उन कबाइलियों का जो रिलीजियस लीडर था ना, उसकी निगाह पड़ गई कि उंगली कटी, उसने कहा अरे ये तो नाकिस जानवर है, नाकिस जानवर की तो कुर्बानी नहीं होती है ना, जो ऐबदार जानवर हो। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग अफ्रीका में क्या करते थे, यहाँ तो नहीं करते, पाकिस्तान में हम लोग जब कुर्बानी करते हैं सींग देखते हैं, दांत देखते हैं, आंखें देखते हैं, कान देखते हैं, चला के देखते हैं, लंगड़ा तो नहीं है, शायद अपनी शादी के वक्त इतनी चीजें चेक ना करते हो दुल्हन के अंदर जितने बकरी में चेक करते हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है कि सही जानवर, और उसका खुलासा ये है कि अगर ऐबदार जानवर, हज की कुर्बानी वाजिब है, वहां भी यही मसला, ये चीजें चेक करो, अरे इसकी तो उंगली कट दीजिए, ये काम नहीं आएगा, छोड़ दो ये बेकार, इसको छोड़ दिया। अब बाहर निकला, सिपाही मिल गए, अपने महल में आया, पहला काम ये किया कि वजीर को बुलाया और कहा जब तुमने उस वक्त मेरी उंगली कटने पे शुक्र खुदा अंजाम दिया था, आज मेरी समझ में आया है कि अगर वो उंगली नहीं कटी होती तो मैं अब तक मारा जाता। लेकिन एक बात बताओ, ये तुमने मेरी मुसीबत के लिए कहा या अपनी मुसीबत, तुम जो जेल में चले गए बैठे बैठे उसके लिए भी तुम कहते हो शुक्र खुदा? कहा उसके लिए भी कहता हूँ। कहा वो क्यों? कहा कि अगर मैं जेल में ना जाता तो यकीनन वजीर तो बादशाह के साथ रहता, मैं आपके साथ साथ होता, मेरी तो कोई उंगली नहीं कटी हुई है, वो आपके बदले मुझे जबा कर देते, मेरी जेल ने मेरी जिंदगी बचाई, आपकी उंगली ने आपकी जिंदगी बचाई। अल्लाह पर इतना ट्रस्ट करें, अल्लाह पर इतना यकीन रखें कि अगर फर्ज कीजिए, मैं तो बहुत एक्सट्रीम पे मिसाल दे रहा हूँ, जवान बेटा हमारे सामने मर जाए, इसमें भी हमारे लिए कोई बेहतरी, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होते, किसी को बीमारी आ गई, किसी का डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, जरा मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ इसलिए कि बातें बहुत सारी हैं, तो किसी का रिस्क का मसला है, किसी का एजुकेशन का मसला है, किसी का वीजे का मसला है, किसी का इमिग्रेशन का मसला, सारी कोशिश कर ली, दुआएं कर ली, कोशिश कर ली, फिर भी इंसान का रिजल्ट नहीं निकला, यकीन रखें अल्लाह पर, तफ़वीज़ुल अम्र इलैय, अल्लाह मैं सारे मामले तेरे हवाले कर रहा हूँ। हजरत मूसा कोहे तूर पर जाते रहते हैं, विजिट करते हैं, तौरात वहीं से लेके आते हैं, कहा कि खुदा बंदा आज मेरा दिल चाहता कि तू जो तौरा है या जो बाइबल का न्यू ओल्ड टेस्टामेंट इससे हटकर स्पेशल कोई ऐसी एडवाइस मुझे करे जो मेरी दुनिया भी बना दे और आखिरत भी बना दे। कहा बस चार बातें याद रखना है मूसा, चार बातें याद रखना। पहली बात ये याद रखना कि अपने रिस्क के बारे में परेशान ना होना। हाँ, जिस दिन तुम्हें पता चले मेरे सारे खजाने खाली हो गए, अल्लाह के पास कुछ नहीं रहा, वो बैंकक्रप्ट हो गया है और फला सेक्शन जो है उसने फाइल कर दिया है कि मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं, तब सोचना कि मेरा रिस्क कहां से आएगा, रोजी कहां से आएगी। कोशिश से नहीं रोका जा रहा है, लेकिन ये है ना कि जी वो गुजारा नहीं होता है तो हराम हलाल सूद शराब किसी का हक मारना बिजनेस पार्टनर का शेयर रख लेना कर्जा लेके वापिस ना करना ये सारी चीजें फरार। जब तक तुम्हें पता है कि मेरे खजाने भरे हुए हैं उस वक्त तक तुम्हें अपने रिस्क के बारे में परेशान नहीं होना। दूसरी बात, जब तक तुम्हें ये कहीं से गारंटी ना मिल जाए, डिवाइन गारंटी आपस में नहीं, कि तुम्हारे सारे ऐप माफ हो गए, उस वक्त तक किसी और के ऐप पे निगाह ना डालना, वो क्या करता है, उसके घर में क्या होता है, वो किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। अगर तुम्हें किसी दिन ये इंफॉर्मेशन मिले कि तुम बिल्कुल मासूम बन गए, तब फिर देखना कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तीसरी बात ये है मेरा मौजू, और जब तक तुम्हें पता है कि मेरे पास ताकत मौजूद है, किसी और के आगे न जाना, सिर्फ मेरे पास आना। आज जिस दिन पता चले कि अल्लाह पावरलेस हो गया, उसको रिवेलेशन आ गया, उसको निकाल दिया गया, उसको हटा दिया गया है, अब देखना कि फिर अब मैं किसकी तरफ जाऊं। लेकिन जब तक मेरी ताकतें हैं, मेरे गैर के आगे हाथ ना फैलाना, जो मांगना मुझसे मांगना। तो आप कहेंगे फिर अहले बैत से, वो अल्लाह ही भाई, आप किसी से मांगते हैं तो वो आपको कैसे देता है, हाथ से देता है ना, हम मांगते अल्लाह से हैं, अली यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ है, तो अली के हाथ से हमको वो मिला करता है। और आखिरी बात, जब तक शैतान की मौत का यकीन ना हो जाए, उस वक्त तक उसकी तरफ से गाफिल ना होना, एक लम्हे के लिए भी निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए। जब तक हाँ पता चले अब शैतान मर गया, अब उसका खात्मा हो गया, उसको कहीं ले जाके दफन किया गया और ये शैतान मरेगा, इमाम जमाना के जाहिर होने के बाद शैतान मारा जाएगा और रसूल खुदा के हाथ से मारा जाएगा। रसूल खुदा ने इतनी जंगें लड़ी हैं, तलवार कभी नहीं चलाई थी, सिर्फ एक वाकया है कि वो भी जंगल में तलवार चलाई नहीं, तलवार उठा ली थी, लेकिन शैतान को खुद पैगंबर अपने हाथ से कत्ल करेगी। ये जो तीन पर्सनैलिटीज आएंगी ना, सुफियानी आएगा वो इमाम जमाना की तलवार से मारा जाएगा, दज्जाल आएगा हजरत ईसा की तलवार से मारा जाएगा, शैतान आएगा वो रसूल खुदा की, हाँ उसके बाद बेफिक्र होगा, लेकिन जब तक शैतान जिंदा है हर लम्हे एहतियात से गुजारना, किसी वक्त भी वो तुम्हें इस तरह से धोखे में मुब्तला करके बड़ा गुनाह करा लेगा। ऐ मूसा, अगर तुम ये चार बातों का ख्याल किया, तुम्हारी दुनिया भी बन गई और आखिरत भी बन गई, तो उसमें एक अहम तरीन बात यह है कि जब तक अल्लाह है और पावरलेस नहीं है, उसकी ताकतें हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको कोई किसी किस्म का टेंशन पालने की, चाहे कितना ही बड़ा इम्तिहान और कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना। और यहाँ जो कुरान की आयत में पहले दिन से तिलावत कर रहा हूं, उसमें एक बहुत अजीब तरीके से मैसेज दिया गया, कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी तमाम इबादतें, व महयाया, मेरी सारी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह के लिए है। इसके बाद सुनी, लिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए जो रब है, रब को तो मैंने कल समझाया, अब आगे बढ़िए, इसके बाद क्या है, ला शरीक अल, उसका कोई शरीक नहीं, वो कायनात में वाहिद है, चुनाचे जब उसका कोई शरीक नहीं है तो उसके साथ किसी को दुनियावी मामलात में मत मिलाओ कि जी वो अल्लाह तो हम मांग रहे हैं नहीं मिल रहा है, उससे मिल रहा है तो उसके पास चले जाओ। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, इसके बाद का जुमला कि अल्लाह पे पूरा भरोसा करो, और क्या तुम्हारा फार्मूला होना चाहिए कि दुनिया का जो काम करोगे, लोग पूछते हैं ना ये काम आपने क्यों किया, बात बकौल हमारे एक मरहूम बुजुर्ग आलिम के अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी के, बहुत पहले 70s में आए थे ना इस एरिया में, वेस्ट में, कहा कि यहाँ की जिंदगी तो सिर्फ तीन जुमले, और वो ये है कि जब कभी भी एक दूसरे से मिलो हाय, मुलाकात खत्म हो जाए बाय, और दीन का कोई हुक्म बताओ तो कहे भाई ये क्यों हराम वो क्यों हराम वाय वाय वाय। तो अब खुदा कह रहा है कि जब कभी कोई तुमसे वाय पूछे, एक ही जवाब तुम्हारा होना चाहिए, एक फार्मूला है जो सब जगह चलेगा हर चीज के जवाब में। कोई मसलन हमारी बच्ची है, वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही है, इतराज हो रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वाय भाई। मुसलमान ही एतराज नहीं कर रहे, नॉन मुस्लिम भी एतराज कर सकता है, और ये भी जरूरी नहीं कि दुश्मनी की वजह से एतराज कर रहा, उसको एक चीज नई लगी, अजीब लगी, उसने पूछा। आपने आपके सामने कोई खाने की चीज आई, आप अपने किसी नॉन मुस्लिम दोस्त के साथ बैठे हैं और खाने की चीज आई, आपने कहा मैं ये नहीं खा सकता, चाहे बहुत ही अच्छी क्यों ना। मैं मिसालें तफसील में नहीं दे रहा हूं कि जरूरत नहीं है, मसलन कोई हराम गोश्त होगा या मसलन नॉन मुस्लिम का स्लॉटर्ड होगा, आपने कहा नहीं, तो पूछेगा वाय। म्यूजिक गाना भाई, सारी दुनिया एंटरटेनमेंट चाहती है, इस्लाम भी एंटरटेनमेंट का हुक्म देता है, लेकिन ये क्यों नहीं सुन रहे तुम गाना, क्यों नहीं चल रहे तुम हमारे साथ फला म्यूजिक कंसर्ट में, वाय। तो वाय तो जगह जगह आते हैं ना। तो अब कुरान ने एक फार्मूला बताया, हो सकता है कि इसके जरिए आप किसी नॉन मुस्लिम को कन्विंस ना करें, लेकिन वो बात की चीजें अपने आप को कन्विंस करें। इसी आयत के आखिर अख्तिताम का बेजालिका उमर तो वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, ये काम क्यों कर रहे हो, वाय इसलिए कर रहा हूँ अल्लाह ने ऑर्डर दिया, वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ। इस्लाम के माने हैं सबमिशन, अल इस्लाम हुवा तस्लीम, सबमिशन इस्लाम के माने कलमा पढ़ना, ये तो टर्मिनोलॉजी में, इस्लाम के असल माने हैं अपने आप को टोटल सबमिट कर लेना अल्लाह के। तो जब ये कहा फला काम क्यों किया, कोई तफसील कोई फिलॉसफी कोई लॉजिक बताने की जरूरत नहीं। हाँ हो सकता है नॉन मुस्लिम को कन्विंस करना पड़े, हो सकता है कभी आपको अपने बच्चे को कन्विंस करना पड़े, वो बात का स्टेज है। अपने आप को क्या कन्विंस करो, ये काम क्यों कर रहे हो, बिज़ालिका अमरतो, क्योंकि उसने मुझे इसका कमांड किया है, ऑर्डर दिया है, वह आना अव्वलुल मुस्लिमीन, पैगंबर से कहा जा रहा है कि कहो कि सबसे पहला मैं मुसलमान हूं, यानी सबसे पहले अल्लाह के सामने सरेंडर करने वाला और सबमिशन कबूल करने वाला मैं हूं। और फिर मौला ने मौला का जो कल का फरमान था उसको आगे बढ़ा रहा हूं। और इस्लाम हुआ तस्लीम, इस्लाम के माने क्या, खाली कलमा पढ़ लेना इस्लाम नहीं है, वह जाहिरी इस्लाम, आखिरत की नजात उस इस्लाम पे नहीं है। इस्लाम के माने अपने आप को टोटल अल्लाह के हवाले कर दो। अब इसमें कितनी ऐसी चीजें, देखिए छोटी सी बात मैं वाजे कर दूं, इसलिए कि ये बहुत अहम मौजू बनने वाला है, इसमें तलाक का मसला भी आएगा, डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी आएंगे, छोटी सी बात वाजे कर दूं। अभी ये बात ये जुमला पूरा करूं कि आपकी पॉलिसी ये होना चाहिए कि कोई काम क्यों कर रहे हो, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया, वह आना अव्वलुल मुस्लिमीन, हुक्म खुदा सुनकर सबसे पहला अमल करने वाला या सबमिशन वाला मैं हूं। अच्छा अब आ जाइए, यहां रुकी एक मिनट, कुछ रिवायतें हमारे पास हैं, मैं वो बात इस वक्त शुरू नहीं करना चाहता, कुछ रिवायतें हमारे पास हैं जिसमें यह है कि रसूलुल्लाह ने बाज औका सम टाइम्स कुछ वाजिबात या हराम की लॉजिक बताना चाहिए। तो हम मुसलमानों ने सुन लिया, सलमान फारसी अबू ज़र ग़फ़ारी ने मना कर दिया, नहीं यार रसूल अल्लाह हमें नहीं बताई, मना कर रहे हैं, क्यों, कहा कि हम तो इस हुक्म पर सिर्फ इसलिए अमल कर रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है और आपने हम तक पैगाम पहुंचाया, अगर आप इसका हमें कोई फायदा बता देंगे तो दिल में यह ख्याल आ जाएगा कि उस फायदे की वजह से हम ये काम कर रहे हैं। शराब हराम है, आज पूरी दुनिया शराब के नुकसान जानती है, हम उस नुकसान की वजह से शराब नहीं छोड़ रहे, हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमारे परवरदिगार ने हुक्म दिया। तो पैगंबर के सिंसियर सहाबी कान बंद कर लेते थे बाज़ औक़ात, कि हमारी नियत के अंदर जो है वो डबल नियत ना होने पाए कि अल्लाह ने भी कहा बोला फायदा भी हमको मिल जाए। अच्छा अब ये बात आगे चल के तफसील से आएगी, लेकिन यहां पर एक बहुत ही मुख्तसर एक बात करें, इतना ट्रस्ट होना चाहिए अल्लाह पर, और अल्लाह का मतलब है अल्लाह के रसूल पर, खुज़ैमा इब्ने साबित अंसारी, घोड़े वाला वाकया, घोड़े वाला, बस मैं इतना इशारा करके आगे बढ़ जाऊं तो उन लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा जो कहते हैं मौलाना ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, और मैं कहता हूं एक दफा पढ़ी, मैंने तो 85 दफा पढ़ी। खुज़ैमा इब्ने साबित अंसारी, कल मैंने वैसे करनी का जिक्र क्या कहकर किया था कि ये वो सहाबी है कि पूरी दुनिया इमाम का इंतजार करती है और इमाम इनका इंतजार कर रहा है, ये वैसे करनी का स्टेटस। اور خزیمہ ابن ثابت انصاری کا اسٹیٹس کیا؟ شیخ عباس قمی نے یہ روایت لکھی ہے, ہسٹری لکھی, کہ مولا نے اپنی زندگی کے آخری ویک میں جو خطبے دیے, بلکہ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنہ والے, انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ علی کی زندگی کا آخری خطبہ تھا, اس کے بعد علی نے پبلک میں کوئی خطبہ نہیں دیا. کون سا خطبہ؟ جس میں مولا, اب یہ خطبے کے جملے بتا رہا ہوں, مولا یہ خطبہ دیتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ علی کے آنسوؤں سے علی کی داڑھی جو ہے وہ ویٹ ہو گئی ہے, گیلی ہو گئی. اور خطبے کا ٹاپک کیا؟ تقوی, قیامت, واجبات؟ نہیں, خطبے کا تعلق یا مولا کی زندگی کا آخری خطبہ ہے. آئینہ, آئینہ یہاں سے شروع ہوتا ہے خطبہ. آئینہ یعنی کہاں, ویئر, یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پھر مولا نام لے رہے ہیں اپنے چند صحابیوں کا جو انتقال کر چکے. آئینہ, آئینہ عمار, آئینہ, آئینہ طیحان, آئینہ, آئینہ ذو الشہادتین. کہاں ہے یہ صحابی, کہاں ہے یہ صحابی؟ مولا یاد کر رہے ہیں, اور یہ کہہ کے یاد کر رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے چلے گا, یہ کہاں؟ ان میں ایک نام خزیمہ ابن ثابت انصاری کا. شروع مجلس میں میں نے کہا تھا نا کہ شیخ مرتضیٰ کے واقعے کا لنک ملے گا آگے, وہ یہ خزیمہ ابن ثابت انصاری آیت اللہ کوئی مرحوم جیسا عظیم مرجع راویوں کے حالات میں کہہ رہا ہے, یہ والی روایت بالکل صحیح روایت جس میں خزیمہ ابن ثابت انصاری کی فضیلت ثابت. وہ روایت کیا؟ وہ روایت یہ ہے کہ بہرحال میں زیادہ سینسیٹیو ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات کچھ غلط جملے زبان پہ آ جاتے ہیں, لیکن تو فیکٹ ہے نا کہ رسول خدا کے بعد میرے مولا کا حق, مولا کا حق, حق جو غدیر خم میں رسول نے علی کو دیا ہے وہ حق غصب کیا گیا, علی کو نہیں دیا گیا. اس وقت 11 صحابی, ایک بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے, اگر آپ کو وہ کتاب پی ڈی ایف پہ تو ہے, مل جائے تو کبھی پڑھیے گا اگر اب تک نہیں پڑھی, بہت دلچسپ انٹرسٹنگ خصال, شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے خصال, جس میں شیخ نے نمبرنگ والی حدیثیں لکھی ہیں. پہلا چیپٹر ہے نمبر 1, اس میں وہ ساری حدیثیں جس میں کوئی ایک 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 چیز آئی. نمبر 5, اس میں سب 5 والی حدیثیں. نمبر 11 اس میں یہ حدیث آئی کہ مولا تو اپنے گھر میں بیٹھے, 11 اصحاب رسول بڑے مخلص غیظ و غضب کے عالم میں اس وقت کے حکمران کے پاس گئے اور جا کر ایک ایک میں الگ الگ اسپیچ کی اور بتایا ہے کہ تم نے جو اہل بیت کا غصب کیا ہے تو کتنا بڑا گناہ کیا ہے, اور ہر ایک نے گواہی دی ہے کہ ہمارے سامنے پیغمبر نے علی کو اپنا خلیفہ بنایا. بہت انٹرسٹنگ روایت ہے, 11 اسپیچز ہیں اور ایک سے ایک اسپیچ, ان میں ایک خزیمہ ابن ثابت انصاری کی اسپیچ. تبھی تو مولا یاد کر رہے ہیں نا کہ یہ مجھے چھوڑ کے مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے. ان کا ایک ہی تو واقعہ سب سے زیادہ مشہور گھوڑے والا, جس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں تاکہ جنہوں نے بہت زیادہ سن لیا ہے نا ان کو بھی زیادہ تکلیف نہ ہو, جنہوں نے نہیں سنا ہے تو ان کو میسج مل گیا. اللہ کے رسول مدینہ کے شہر سے باہر کسی کام سے گئے تھے, واپس آ رہے, صبح کا وقت ہے, تو آگے کوئی نان مسلم گھوڑا لے کے جا رہا تھا مارکیٹ پہ بیچنے کے لیے. آج کل تو کاروں کے شو روم ہوتے ہیں, اس وقت یہ جانوروں کے شو روم ہوتے تھے, تو وہ شام کے وقت اپنے گھر میں لے جاتے تھے شہر کے باہر, فارم وغیرہ جہاں جانور ہیں وہ شہر کے باہر ہوتے ہیں, صبح مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں. پیغمبر نے دیکھا, پیغمبر کو گھوڑا بہت پسند آ گیا, اچھی سواری, اچھا پڑوس اور اچھی بیوی. امام کی حدیث ہے کہ کسی مومن کو اس سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی نعمت مل ہی نہیں سکتی, سواری اچھی, پڑوس اچھا ہو, بیوی اچھی ہو. تو اب آئیے, اب ایک ایک جملے کو سمجھانے کے لیے دل چاہتا ہے, ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس, اور کچھ لوگوں نے بہت یہ حدیثیں سنی ہوئی. خلاصہ یہ ہے, گھوڑا پسند آ گیا, پیغمبر نے اس سے کہا کہ بھائی گھوڑا بہت اچھا ہے, میں خریدنا چاہتا ہوں. اہل بیت اطہار غربت یا فاقے کی زندگی خود بائی چوائس گزارتے تھے, مجبوری میں نہیں گزارتے تھے. دیکھیں ہر معصوم کے پاس گھوڑا تھا کہ نہیں, ایک نہیں کتنے گھوڑے تھے. گھوڑا کوئی آسان چیز ہے؟ آج کا مرسیڈیز بینڈ ہے گھوڑا, پورے پورے دو دو چار چار پانچ پانچ مثلاً گھوڑے ہیں, تو آپ سن تو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی علی فاقے کر رہے ہیں اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, سوکھی روٹی وہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں. خیر, تو بات یہ کہ پیغمبر نے کہا, اس نے بھی سوچا کہ میں گھوڑا لے کے مارکیٹ میں جاؤں گا, پورا دن محنت کروں گا, پھر بھی پتا نہیں بکے گا نہ بکے. گھوڑے روز نہیں بکتے ہیں, مارکیٹ میں لے کے جاؤ ایک ایک ہفتہ لگتا ہے, یہ تو یہاں مارکیٹ میں گئے بغیر ہی گھوڑا مجھے مل گیا, بک گیا. کہا بالکل بالکل, یہ پرائز ہے, پیغمبر نے کہا پرائز دیتا ہوں. ڈن ڈن, جیسے آن و محمد کے والد کو دیکھ کر پیغمبر نے ڈن ڈن کا لفظ کہا تھا نا, ڈن ہو گیا سودا, یہ چیز میری ہوگی. पेमेंट करना. अब इतना पेमेंट तो कैश नहीं होता ना जो आदमी शहर से भाग गया. मेरे साथ चलो मस्जिद, मेरा घर है, मैं तुम्हें पेमेंट कराऊंगा. बिल्कुल लॉजिकल बात. वो चला. अच्छा वो तो खुशी में तो तेज चल रहा है क्योंकि उसका इतना जो था हेड ही खत्म होकर रह गया. पैगंबर अपनी नॉर्मल स्पीड से आ रहे तो वो जब तेज चल रहा है तो पहले पहुंच गया मदीने. लोगों की निगाह इस घोड़े पे पड़ी. अब हर आदमी कहने लगा इतना अच्छा घोड़ा हमें खरीदना, हमें खरीदना, हमें खरीदना. अब बात होने लगी ये प्राइस, ये प्राइस, ये प्राइस, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है. चुनाचे हमारे यहाँ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हाउसिंग का प्रॉब्लम. इमिग्रेंट बहुत आ गए, मकान नहीं. चुनाचे वहां भी बहुत रिस्ट्रिक्शन लग गई है और मकान की हालत ये होती है कि जो उसकी कीमत है उसकी डबल कीमत देने को लोग तैयार होते हैं और कैश लेके खड़े होते हैं कि ये लीजिए और अभी हाथ के हाथ मकान दीजिए. अब वो यहूदी देख रहा है कि जो मेरे एक्सपेक्टेड इसकी प्राइस थी उससे तो 10 times ज्यादा मिल रही. अब वो बात करने लगा लोगों से. इतनी देर में रसूल भी आ गए, इसे ही तो चल रहे थे. कहा ये क्या कर रहे हो, ये तो मैं खरीद चुका हूँ, ये तो मेरी चीज है, तुम्हें तो खाली इसकी डिलीवरी देना थी और पेमेंट लेना था. मुकर गया, साफ मना कर दिया. कहा कि नहीं नहीं, हमारी आपकी बात चल रही थी लेकिन ये डील हुई नहीं थी, ये तय हुआ था मदीने पहुंच के फैसला करेंगे. अब वहां सब कुछ हो चुका है, खाली पेमेंट लेना, लेकिन मना कर दिया उसने. पैगंबर ने मजमे को देखा और कहा कि भाई देखो ये नॉन मुस्लिम गलत कह रहा है, मैंने बाहर खरीदा था ये घोड़ा, बात हो गई थी लेकिन अब ये मना कर रहा है, तुम में से कोई मेरा विटनेस बने. अब जिसे पैगंबर देखे पीछे हो गए, नहीं या रसूल अल्लाह हम झूठ तो नहीं बोल सकते, या रसूल अल्लाह हम झूठ तो नहीं बोल सकते. कुछ लोग मुत्तकी होते हैं, कुछ लोग सुपर मुत्तकी होते हैं. नहीं या रसूल अल्लाह आपका कलमा अपनी जगह पे, लेकिन हम कैसे झूठ बोलेंगे. चुनाचे हर आदमी पीछे हट रहा. इतने में खुज़ैमा इब्ने साबित अंसारी वहां से गुजरे. या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मजमा लगा है, क्या बात है. पैगंबर ने कहा बात सिर्फ इतनी है कि घोड़ा मैंने खरीद लिया था, डन डील हो गई थी, अब ये मना कर रहा है. अब मुझे एक विटनेस चाहिए जो ये गवाही दे कि मैंने घोड़ा खरीदा था. खुज़ैमा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि घोड़ा आपने खरीदा था. अच्छा अब मसला यह था, जब उसने ये कहा तो पैगंबर ने, क्योंकि पैगंबर को मैसेज देना है, ये घोड़े का मसाला नहीं है, ये इस्लाम का अहम तरीन पैगाम. पैगंबर ने बजाय इसके कि यहूदी के सामने इसको पेश करते, पलट के उसी से कहा, खुज़ैमा से तुमने कैसे गवाही दे, तुमने तो देखा ही नहीं ना, तुम तो थे ही नहीं वहां पे जब ये डील हो रही थी, कैसे गवाही दे. कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा अल्लाह है, हमने अल्लाह को नहीं देखा, आपके कहने पे माना. आपने कहा जिब्राइल आते हैं, हमने जिब्राइल को नहीं देखा, आपके कहने पे माना. आपने कहा मैं रसूल हूँ, हमने रिसालत मिलते नहीं देखा, आपके कहने पे माना. आपने कहा कयामत में ये होगा, हमने कुछ नहीं देखा, आपके कहने पे माना. जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें बगैर देखे आपके कहने पे मांगी, मान ली, तो एक घोड़े की क्या हैसियत है कि हम कह के पहले देखेंगे फिर गवाही देंगे. पैगंबर ने ऐलान किया अंतज शहादत है, तुम एक हो लेकिन आज से दो के बराबर हो. एक हो, दो होने चाहिए ना, वो जो शुरू में बात गुजर गई थी, लेकिन तुम्हारी गवाही दो के बराबर है. और यही जुमला, इसीलिए इनका टाइटल है जुश शहादत है. शहादत है जो है ना, ये तस्निया का सीगा है, दो के बराबर वाला आदमी एक है लेकिन. और यही जुमला इन्होंने उस हकीम से कहा था जिसने अली कहा गस्ल कर लिया. कहा था कि तुम्हें पता है ना कि रसूल ने मुझे दो के बराबर कहा, मैं गवाही देता हूं कि अली इमाम बरहक है, वसी रसूल है, खलीफा बरहक है, खलीफा बिला फजल है. अपनी इसी फजीलत को दलील के तौर पे पेश किया. देखिए ये खाली उनका वाकया नहीं, हर मोमिन और मोमिना से इस्लाम यही चीज चाहता, चाहे इसमें आपका कितना ही नुकसान क्यों ना हो रहा, लेकिन जो रसूल ने कह दिया कह दिया, जो इमाम ने कह दिया कह दिया, इसके आगे और कोई चीज नहीं. चुनाचे आका हुसैन जो अपने भतीजे को मख्तल में नहीं भेजना चाहते, लेकिन जब अपने बड़े भाई का हुक्म मिला तो मना करने वाला हुसैन अब राजी हो रहा. अक्सर मैं एक जुमला कहता हूं कि लोग मौला की बेटियों ज़ैनब उम्मे कुलसूम को तकरीबन ये चाहे टेक्निकली मासूम 14 हो लेकिन ये मासूम से कम भी नहीं, बहुत हाई स्टेटस है. लेकिन भाई ज़ैनब का कितना ही हाई स्टेटस समझ में आ जाता है, अली की बेटी, जहरा की बेटी, फातिमा का दूध उनकी गिजा बना, इस्मत और तहारत के घर में पली बड़ी, बचपना भी वहीं गुजरा. वो तो जैसा भी हमारे सामने किरदार या कैरेक्टर उनका आए तो हमें कम ही लगता है, उससे भी अजीम है ज़ैनब. सही मानों में जो कैरेक्टर हमारे सामने आता है करबला की उन खवातीन का जो अली की बहुएं, इनमें से कोई मासूम नहीं, इनमें से कोई किसी मासूम घर में पैदा नहीं हुई, इनमें से किसी ने किसी मासूमा माँ का दूध नहीं पिया, इनमें से किसी की रगों में किसी मासूम अली जैसे बाप का खून नहीं, आम उम्मती आम कलमा पढ़ने वालों के घर से ही आई। लेकिन ये यकीन कीजिए कि अगर इस्लाम हमें हुक्म ना देता तो हमें इनका और जनाब जैनब के जिहाद में कोई फर्क नहीं लगता, हमें ये सब भी जैनब लगती। अली की बहुओं को सलाम कीजिए, चाहे वो उम्मे फरवा हो, चाहे वो उम्मे लैला हो, चाहे वो रबाब। अच्छा, रबाब और फरवा तो खैर हैं भी सगी बहन, लेकिन करबला के वाकये तक, करबला के वाकये तक यानी टिल सेकेंड ऑफ मुहर्रम, लैला और रबाब ने कोई बड़ा इम्तिहान नहीं दिया, फरवा ने इम्तिहान दिया। किसी खातून से पूछिए कि ऐन जवानी के अंदर अगर उसका शोहर मारा गया और शोहर की एक निशानी छोटा सा बच्चा उसकी गोद में, और खाली आम मौत नहीं, वो अपनी आंखों से देखे कि मेरे शोहर का कलेजा टुकड़े टुकड़े होके तश्त में गिर रहा। बहुत बड़ा इम्तिहान होता है किसी औरत का जवानी में बेवा होना। ये जुमला मेरा नहीं है, ये जुमला जब हमना बिनते जहश ने फरियाद की थी, पैगंबर ने कहा तुम मर्दों को क्या पता औरत के लिए शोहर कितना अहम। हमना बिनते जहश का मशहूर वाकया है, पैगंबर ने कहा तुम मर्दों को नहीं मालूम औरत के लिए उसका शोहर कितना अहम होता। उम्मे फरवार ऐन जवानी में बेवा हुई, और जब बेवा हुई है तो गोद में कासिम था, बाज उलमा कहते हैं 1.5 साल की एज थी, बाज कहते हैं 3 साल था बहुत। अब जब औरत जवानी में बेवा हो जाए, छोटा सा बच्चा हो, तो उसकी एक ही ख्वाहिश होती, बाकी दुनिया की सारी चीजें भूल जाती, ये बच्चा मैं परवरिश करूंगी, पलेगा बढ़ेगा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद इसकी शादी करूंगी और इसकी जिंदगी देखकर मैं अपने सारे पास को भूल जाऊंगी। ये बेवा औरत की तमन्ना अगर उसकी औलाद है इतनी छोटी, उम्मे फरवा इसी सहारे से 10 साल गुजार रही, ये इम्तिहान लैला ने नहीं दिया। मैं उनका रुतबा कम नहीं कर रहा हूं, इम्तिहान अलग अलग तरीके होते, ये इम्तिहान रबाब ने नहीं दिया, ये फरवा ने दिया कि 10 साल जो बेवगी के गुजारे हैं हसन मुस्तफा के बाद, बस कासिम को देख देख के माँ जीती, कासिम को देख देख के माँ जिंदा होती, बस ये बड़ा हो जाएगा और मेरी जवानी की सारी मुसीबतें मैं भूल जाऊंगी। लेकिन यही वो माँ है जो करबला में सबसे ज्यादा तड़प रही है कि मेरा कासिम कितने जल्दी मरने जा रहा है। अब आइए फिर 10 साल पहले चले, 10 साल पहले चलते, हसन मुश्तबा का कलेजा टुकड़े टुकड़े होके तश्त में गिर रहा, उम्मे फरवा इंतहाई परेशानी के आलम में कि हसन ने इशारे से करीब बुलाया और कहा उम्मे सलमा उम्मे फरवा मैं तुम्हें एक तावीज दे के जा रहा हूँ, ये तावीज जब मेरा कासिम थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाजू पे बांध देना, और जब मेरे कासिम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए, बहुत बड़ी मुसीबत, तो ये तावीज खोल के देख लेना। हम और आप किसे मुसीबत कहते हैं, हमारा बेटा बीमार हो जाए, हम और आप किसे मुसीबत कहते हैं कि वो किसी एक्सीडेंट के अंदर हो, हम और आप किसे मुसीबत कहते हैं जब उसकी मौत नजर आ रही, और उम्मे फरवा किसे मुसीबत समझ रही है, तावीज नहीं खोला उम्मे फरवा ने, यहां तक के आशूरा गए, नहीं शबे आशूरा गए, शबे आशूरा। देखिए उम्मे फरवा का इतना करबला के जिहाद में अहम हिस्सा कि आज भी आप खेमा गांव में जाते हैं करबला में, सिवाय जैनब कुबरा के किसी बीबी का खेमा महफूज नहीं, या उम्मे फरवा का खेमा, याद है ना आपको, बिल्कुल आखिर में कॉर्नर के अंदर उम्मे फरवा का खेमा है, वही खेमा था जहां उम्मे फरवा ने कासिम से एक जुमला कहा और कासिम को भेजा हुसैन के खेमे की तरफ। आशूर की रात आ गई, अंधेरा छा गया, मर्दों का इम्तिहान लेने के बाद मेरा मौला आके मुसल्ले पर बैठ गया, क्योंकि उमर एहसास से जो एक रात मांगी थी तो ये कह के मांगी थी कि जिंदगी में कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जो मैंने इबादत खुदा के बगैर गुजारी हो, तो ये आज की रात भी इबादत में गुजारूंगा। अब हुसैन मुसल्ले पे बैठे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान है, दुआएं हैं, और आपको मालूम है कि बाज़ औक़ात दुआ में आदमी इतना महव हो जाता है कंसंट्रेशन कि आंखें बंद हो जाती हैं और आसमान को देख रहा है कि एकदम ऐसा लगा कि मेरे पहलू में कोई आके बैठ गया। हुसैन ने आंखें खोल के देखा, क्या देखा, मेरे भाई हसन का यतीम वारिस कासिम बैठा। बेटा कासिम, ये आधी रात का वक्त है, यहाँ क्यों आए, जाओ माँ के पास जाके बैठो, یہ ماں کو تسلی دینے کا وقت ہے. قاسم نے کہا کہ چچا مجھے میری ماں نے ہی تو آپ کے پاس بھیجوایا اور ابھی مجھے بلا کے کہا تھا. قاسم بیٹا دیکھو میں سیلانی نہیں, میں غیر خاندان سے آئی. کل کے جہاد میں اگر تو پیچھے ہٹ گیا تو دنیا کہے گی حسن کا بیٹا پیچھے نہ ہٹتا, یہ فروا کے دودھ کی خرابی. مجھے شرمندہ تو نہیں کرے گا؟ کل جا کے آقا سے اتنا پوچھ کے آ جا کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے کہ نہیں. چچا تو بس میری ماں نے بھیجوایا اتنا بتا دیجیے. اور حسین کوئی جواب نہیں دے. ہاں قاسم کو سینے سے لپٹا لیا, قاسم کا بدن سونگتے جاتے. قاسم بیٹا تجھ سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی, کاش میرا بھائی اس وقت میرے ساتھ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ کربلا میں اس کے حسین پہ کیا گزر رہی. اچھا حسین بدن سونگ کے امام حسن کو یاد کر رہے اور قاسم سوال دہرا رہے. چچا بس اتنا بتا دیجئے کہ مرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں. حسین نے کہا قاسم تو بار بار مرنے کی بات کر رہا ہے, تجھے پتا بھی ہے کیفا اندقل موت, موت کیسی ہوتی. حسن کا یتیم ہے, حیدر کرار کا پوتا ہے, انگڑائی لے کے کہتا ہے چچا احلی من الاصل, شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے موت, لیکن میرا نام ہے کہ نہیں. جب تین مرتبہ کے بعد بھی حسین نے کوئی جواب نہ دیا تو قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا چچا میں سمجھ گیا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں. حسین نے کہا قاسم تو اپنی بات کر رہا ہے, ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. تڑپ کے کہا کہ چچا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں کے اندر داخل ہو کے اصغر کو شہید کرے گی؟ حسین کیسے بتائیں, قاسم اصغر تو میرے ہاتھ میں تلے زینبیہ پہ شہید ہوگا. لے کے واپس بھیج دی, جا اپنی ماں کے پاس میں یہ جملہ کہہ کر کہ کل کے شہیدوں میں تو تیرے بھائی اصغر کا نام بھی. اور اب کربلا کا جہاد شروع ہوا, فجر میں علی اکبر کی اذان, نماز پڑھی, جہاد شروع ہوا. جس وقت بھی قاسم خیمے میں آتے ہیں ام فروہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں قاسم بیٹا تو اب تک زندہ؟ جس ماں نے ساری زندگی اپنے بیٹے کے تصور میں گزاری آج وہ کہہ رہی تو اب تک زندہ؟ لیکن جب زینب کے لال اون اور محمد کے لاشیں آ گئے, اب جو قاسم آیا تو ام فروہ نے انتہائی جلال کے عالم میں منہ پھیر لی. قاسم نے ہاتھ جوڑے, اما کیا ہوا؟ کہا تو نے مجھے میری شہزادی کے سامنے شرمندہ کر دیا, شہزادی زینب کے بیٹے مارے جائیں اور میرا بیٹا زندہ رہے. قاسم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اما کسی سے پوچھ لیں, ہر وقت میں جاتا ہوں چچا کے پاس کہ چچا مجھے جانے دیجیے, لیکن میرا چچا اجازت ہی نہیں دے رہا, میرا آقا اجازت ہی نہیں دے رہا, میرا مولا اجازت ہی نہیں دے رہا. اب ام فروہ پریشان, حسین منع کر رہے ہیں, ہمیں وقت ہے. یاد آ گیا, ارے میرے شوہر نے کہا تھا جب میرے قاسم پر بہت بڑی مصیبت آئے تو تعویذ کھول کے دیکھ لینا. ام فروہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میرا قاسم مر کیوں نہ رہا, زندہ کیوں ہے؟ ایسی مائیں نظر آئیں گی سوائے کربلا کے, اب تک کیوں زندہ ہے؟ تعویذ کھولا تو امام حسن کی وصیت تھی, قاسم بیٹا کربلا میں میرا بھائی دشمنوں کے درمیان گھر جائے گا تو اپنے باپ کی طرف سے اپنی جان میرے بھائی پہ قربان کر دینا. یہ خط نہیں تھا, گویا عید کا دن بن گیا قاسم کے لیے. ایک مرتبہ یہ خط لے کے چلے, حسین کے پاس پہنچے. چچا میرے بابا کی وصیت پڑھ لیجئے. اب حسین نے وصیت پڑھی, یہ میرا جملہ تھا نا کہ حکم امام آ گیا, اب اس وقت حسن کا حسن حسین کے بھی امام رہ چکے ہیں. یہ جیسے ہی پڑھا کہا قاسم بیٹا اب میں تجھے نہیں روکتا, چل تیاری کر. قاسم چلنے لگے, ام فروہ نے روک دیا. شہزادی سے کہا شہزادی اچھا یاد رکھیے یہ کربلا کی جتنی بیویاں جو مشہور ہیں نا ان میں ام فروہ وہ واحد ہیں جو آقا حسین کے لیے نامحرم. زینب محرم, ام کلثوم محرم, لیلہ محرم, رباب محرم, یہ واحد نامحرم. تو جو بات ہوتی ہے زینب کے ذریعے ہوتی, شرن حرام نہ صحیح لیکن جو اہل بیت کے گھرانے کا طریقہ. کہ شہزادی ایک لمحے کے لیے روک لیجئے میرے قاسم کو, میں آتی. اور ایک بار گئیں سامان میں سے امام حسن کا امامہ لے کے آئیں. شہزادی زینب کو دیا اور کہا آقا سے کہیے اپنے ہاتھ سے میرے قاسم کو یہ امامہ پہنا کے بھیجے. چھوٹا ہے تو کیا ہوا لیکن حسن کا لال حسن بن کے جائے گا. اور یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ قاسم 13-14 سال اتنے چھوٹے تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکے, عباس نے گود میں لے کے گھوڑے پہ بٹھایا. زین تک پیر نہیں جا رہے تھے رکاب میں, تو رکابیں کاٹی گئی, زرہ پہنانے کی کوشش کی گئی, بدن پہ کوئی زرہ آ ہی نہیں رہی ہے, اور وہی کرتا پہن کے چلے. بات بہت لمبی ہو رہی ہے اور آپ نے ساری زندگی مسائل سنے, بات کو مختصر کرتا ہوں. اور اب جو قاسم گئے تو واقعا ایسا جہاد کیا کہ کربلا کے اندر اس کی مثال بہت کم ملے گی. یہاں تک کہ عمر سعد گھبرا کے, جو سب سے بہادر تھا ازرق پہلوان, جو 1:1000 تھا, اس سے کہا کہ جا کے تو روک, میری فوج کے تو قابو میں نہیں آ رہے قاسم. اس نے کہا کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے, ایک بچے کے مقابلے میں جاؤں گا؟ عمر سعد نے کہا لیکن دیکھ تو, یہ بچہ نہیں ہے, حیدر کرار کا پوتا ہے, حسین کا بھتیجا ہے, حسن کا لال ہے. کہا میں بیٹے کو بھیجتا ہوں. آپ نے سنا, چار بیٹے ایک دوسرے کے بعد بھیجے, سب قاسم کی تلوار سے واصل جہنم. آخر میں وہ خود آئے, جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا تھا, خود آیا. قاسم نے حملہ کیا, وہ ایک مرتبہ گھوڑے سے گرتے چیخا میری مدد کرو, بس یہ سننا تھا. سارے لشکر نے 13 برس کے قاسم کو گھیرے میں لے لیا, تیر چلے, تلواریں چلی, بٹھیاں چلے, 13 برس کا گلبدن قاسم ان کے درمیان, زخموں سے چور چور زمین کربلا پہ گرا, اور ایک مرتبہ آواز دی, یا اماں ادرکنی, چچا میری مدد کو آئیے. یہ تاریخ کا جملہ پڑھ رہا ہوں, تاریخ کا. کربلا میں سارے شہیدوں نے حسین کو بلایا, اکبر نے بھی بلایا تھا اور محمد, لیکن جتنی تیزی سے حسین قاسم کی آواز سن کے دوڑے, لشکر یزید کو بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنے جلدی آ جائیں گے. جتنی تیزی سے حسین آئے کہ لشکر یزید گھبرا گیا. جب حسین کو اپنے سر پہ دیکھا, گھبرا کے کیا ہوا, گھبرا کے وہ بھاگے, اور اس طرح بھاگے کہ لیفٹ کے گھوڑے رائٹ گئے, رائٹ کے گھوڑے لیفٹ گئے, مگر یہ جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں نا, ان کے بیچ میں زمین کربلا پر ایک گلبدن پڑا. میرے مرحوم استاد علامہ طالب جوہری کے والد مصطفیٰ جوہر صاحب ایک جملہ کہتے ہیں, کربلا کے اندر جتنے مجاہد سب نے حسین کے لیے قربانی دی, لیکن ایک ایسا امتحان جو یا حسین کا تھا یا قاسم کا تھا, اور وہ ہے بدن پہ گھوڑے دوڑنا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا. یا حسین پامال کیے گئے یا قاسم, لیکن کہتے ہیں اس میں بھی ایک فرق ہے, حسین کا جسم پامال ہوا حسین کی شہادت کے بعد, قاسم ابھی زندہ ہے, قاسم زندہ ہے, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. آخر لشکر یزید تو بھاگا, حسین سر آنے پہنچے. ایک جملہ میں نے بزرگ علماء سے سنا کہ قاسم کی وہ حالت تھی, کہ ایک بزرگ عالم سے سنا کہ امام زمانہ سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں, میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئیں, بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئیں. قاسم کے سرانے پہنچے اور کہا کہ قاسم بیٹا, یہ میرے لیے کتنا مشکل اور شاق ہے کہ تم نے بلایا اور میں وقت پہ نہیں آ سکا. قاسم نے آنکھیں کھولتے ہی حسین کو دیکھا اور مرتبہ کہا, بابا آپ آگئے میرا سلام لیجئے, بابا آپ آگئے میرا سلام لیجئے. ارے کیا قاسم, موت کے قریب پہنچ کر اتنا بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ حسین آئے ہیں, چچا آئے ہیں, بابا نہیں آئے ہیں, پھر کیوں کہا؟ ہاں اس لیے کہا, ادھر قاسم گھوڑے سے گرے, ادھر حسین خیمے سے نکلے, اور حسن مصطفیٰ جنت البقیع کے قبرستان سے چلے. قاسم بیٹا گھبرانا نہیں, تیرا باپ تجھے لینے آ رہا ہے. دونوں بھائی ایک وقت میں پہنچے. بس آخری میرے جملے, بہت آپ نے گریہ کر لیا, اس گریہ کے تو فیل اللہ کو آپ کو ہر مصیبت سے بچائے. حسین قاسم کو لے کے جانا چاہتے ہیں, قاسم کا بدن پامال ہے, لے جانا مشکل ہے. حسین نے ابا بچھائی, دیکھیں ہر شہید کا لاشا لائے لیکن ابا کسی کے لیے نہیں بچھا. قاسم کا بدن اٹھایا, لے کے چلے, خیمے کے دروازے پہ پہنچے. بس یہ آخری جملہ, خیمے کے دروازے پہ پہنچے. اب وہاں بیویوں کو پتا ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کا لاشا خیمے میں آتا ہے, خاندان کا کوئی ہے تو. بیویاں انتظار کر رہی ہیں کہ اب قاسم کا لاشا آتا ہے, اب قاسم کا لاشا آتا ہے. بہت دیر ہو گئی, قاسم کا لاشا نہیں آیا. زینب گھبرا کے باہر آئی, دیکھا حسین دروازے پہ کھڑے, خیمے کے دروازے پہ کھڑے. کہا بھیا کیا بات ہے, خیمے میں کیوں نہیں آ رہے, قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ حسین نے ابا کی طرف اشارہ کیا, کہا قاسم اس میں ہے اور میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں, میں نہیں آنا چاہتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ فروا یہ منظر دیکھے تو مام مر جائے گی. ام فروا زینب کے پیچھے ہی کھڑی تھی. اب پہلی بار ام فروا حسین سے گفتگو کر رہی ہیں, آقا ذرا دکھائیے تو میرا قاسم کس حالت میں ہے. حسین نے ابا کھولی, ماں ماں کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ہیں بدن کے. ایک جملہ کہا کہا شہزادی زینب, شہزادی کلثوم, رباب, فروا, لیلا, آ کے مجھے مبارکباد دو, میری قربانی تو سب سے زیادہ قبول ہو گئی. ہائے میرا گل بدن قاسم, ہائے قاسم.